हाँ जी
रामबली आत्मा पहला ब्राह्मण पहला जो बता पहला क्षत्रिय पहला विष्णु तो पहला वैशा तो दापर में पहला तो राजा विक्रमादित्य होता है ब्रह्मा का छोड़ रामबली का छोड़ नहीं होता है
रावण राज्य का राजा बनेगा तो यथा राजा तथा प्रजा हो जाएगी। ये नहीं कहा यथा गुरु तथा प्रजा। तो विक्रमादित्य का गुरु बनेगा या विक्रमादित्य राजा बनेगा, क्या बनेगा? गुरु बनेगा।
बाबा ज्ञान जल क्या होता है रब भालो बेटे
हैं? जैसे जल होता है पहाड़ों से आता है और नीचे की ओर जाता है, ऐसे ही ईश्वर का जो ज्ञान है वो ऊंची स्टेज से आता है और फिर किधर जाता है? जितना विस्तार को पाता जाएगा उतना उसमें कचरा मिलता जाएगा, नीचे जाता है।
बाबा
हाँ।
ब्रह्मा का वाणी वेद वाणी तो वेद और तत्व ज्ञान
है,
वेद और तत्व ज्ञान होता है
हाँ।
तो ब्रह्मा कुमार कुमारी जो ब्रह्मा का ज्ञान का तो ज्यादा महत्व देते थे
हाँ।
तो लेकिन वो ज्ञानी बच्चा कैसे हुआ? वो तो ज्ञानी बच्चा नहीं है, तो ये क्या है बाबा? कहने का मतलब क्या?
ज्ञान का मतलब है जानकारी। ज्ञानी माने जानी कि अज्ञानी, और सिर्फ सुनता हो लेकिन जानता न हो। सिर्फ सुनने से जानना हो जाता है क्या? कि सुनने के बाद समझना भी होता है, है?
हाँ, समझना भी होता है।
तो समझते हैं
बाबा।
द्वापर में भी ऐसे ही हुआ, धीरज धर्मनुआ बस 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 बस। द्वापर के आदमी गीता के साथ ही साथ, क्योंकि पहले तो गीता निकली संस्कृत की, गीता वेदों से भी पहले, यज्ञ के आदि में भी गीता का क्लैरिफिकेशन होता था संस्कृत की गीता का, बाद में ब्रह्मा के मुख से सन 47 से वेदवाणी निकली। ऐसे ही भक्ति मार्ग के द्वापर में भी गीता के बाद वेद तैयार हुए, परंतु उन वेदों की ऋचाओं को आज कोई पढ़ता है? क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि वेद के वो ऋचाएं समझ में नहीं आती हैं किसी को, उनका तालमेल किसी को नहीं बैठता। जैसे मुरली में कहीं आता है कृष्ण श्याम सुंदर, फिर कहते हैं सतयुग में कृष्ण सुंदर होगा, तो श्याम सुंदर का क्लैरिफिकेशन बीके वालों को समझ में आता है? जैसे मुरली में कहते हैं कृष्ण सूर्यवंशी राधा चंद्रवंशी, फिर मुरली में कहते हैं सतयुग में एक ही वंश होगा, एक ही कुल होगा, एक ही भाषा होगी, एक ही राज्य होगा। तो ब्रह्मा कुमारियां क्या समझती हैं कि बाबा कहीं खेत की बोलता है, कहीं खलियान की बोलता है, उनकी समझ में बात नहीं आती है। ऐसे ही जो वेद की ऋचाएं हैं उनका तालमेल किसी की बुद्धि में नहीं बैठा, न बैठने के कारण गीता की व्याख्याएं भी अलग अलग प्रकार से कर दी। तो बुद्धि विकारी होती जाती है। गीता की टीकाएं भी विकृत हो जाती हैं। द्वापर के आदि में सात्विक स्टेज थी, तामसी स्टेज थी। हर युग चार अवस्थाओं से गुजरता है। तो जब सात्विक स्टेज थी तब गीता लिखी गई, वेद भी लिखे गए, फिर बाद में विकारी धर्म पिताओं के आने से, मनुष्य गुरुओं के आने से, पावरफुल आत्माओं के आने से, उनके प्रभाव में आकर देवताएं क्या बनते गए, तामसी बनते गए। उन देवात्माओं ने व्याख्याओं को अपने अपने तरीके से विकृत कर दिया और तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना, गांधी गीता, टैगोर गीता, राधा कृष्ण गीता, शंकराचार्य गीता, रामानुज गीता, अनेक प्रकार की टीकाएं हो गई और सभी टीकाएं एक दूसरे को काट करने वाली। रामानुज की टीका कहती है आत्माएं अनेक हैं और परमपिता परमात्मा उनसे अलग एक है। शंकराचार्य की गीता कहती है आत्मा सो परमात्मा, मूल में ही कितना फर्क हो गया। ऐसे ही यहां ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में होता है। मुरली जो वेद वाक्य है उसके अर्थ का अनर्थ होता गया, लास्ट में जाकर के कलयुग के अंत में वही वेद व्यास जिसके मुख से गीता की सच्ची व्याख्या निकली थी, जो बाद में मुसलमानी प्रभाव से जमीन के अंदर गाड़ दी गई, वही वेद व्यास वाली आत्मा फिर से गीता की सच्ची व्याख्या करता है। और संसार ये जानता है, दुनिया के सभी धर्म वाले ये जानते हैं कि ज्ञान के हिसाब से, आध्यात्मवाद के हिसाब से गीता दुनिया का सर्वोपरि ग्रंथ है। क्रिश्चियंस भी यही बात मानते हैं, मुसलमान भी यही बात मानते हैं, इस्लामी भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं। ज्ञान के आधार से इतना श्रेष्ठ ग्रंथ दुनिया में कोई नहीं है। ढेर की ढेर प्रतियां छपती रहती हैं सभी भाषाओं में। गीता में लिखा हुआ भी है, सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। शास्त्रों में एक ही शास्त्र है जो भगवान का गाया हुआ गीत है। द्वापर में उनका नाम दे दिया भगवान वेद व्यास। मनुष्य था या भगवान था? है, मनुष्य था। मनुष्यों के द्वारा भूल होती है या नहीं होती है? सबसे बड़ी भूल हो गई गीता में भी, और वो एक ही श्लोक है जिसमें वो भूल अभी भी नुधी हुई पड़ी है। नहीं, इस षष्ठी चक्र का ड्यूरेशन नहीं मालूम है सही किसी को। बल कहते हैं कि महाभारत युद्ध को 5000 वर्ष हुए, परंतु गलती से महाभारत द्वापर के अंत में डाल दिया। बल क्रिश्चियंस भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। परंतु क्रिश्चियंस की बात कौन सुनेगा? हिंदू तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाइयां हुई, ग्रीस और मेसोपोटामिया में भी खुदाइयां हुई, उनमें 5000 साल पुरानी चीजें मिली। परंतु उन बातों को भी कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। बाबा ने बताया कि ये सृष्टि सुख और दुख का चक्र है। आधा समय सुख की दुनिया और आधा समय दुख की दुनिया। सुख की दुनिया माना आत्मा अभिमानी देवताओं की दुनिया, और दुख की दुनिया देह अभिमानी अज्ञानियों की दुनिया। जो आत्मा रूपी एक्टर को तो कोई कोई जानते हैं, जैसे अंग्रेजों में एक शेक्सपियर हुआ, उसने लिखा ये दुनिया एक रंगमंच है और हम आत्माएं एक्टर्स हैं। परंतु ये किसी की बुद्धि में ना आया कि हम आत्माओं का असली नाम रूप और कर्तव्य क्या है, कितने कितने जन्म लेती हैं। मुसलमान क्रिश्चियंस तो मानते हैं जन्म होता ही नहीं एक के अलावा। मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर आकर एक ही जन्म लेती है, फिर कब्र दाखिल हो जाती है। इसलिए वो बात भी हिंदुओं को रास नहीं आई। तो गीता में जो मुख्य भूल है, गीता का भगवान साकार कृष्ण है। निराकार नहीं, और वो साकार कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, माने कलाओं में बंधा हुआ है, और भगवान कलाओं में बंधा हुआ होता है। भगवान तो कलाओं से परे है, क्योंकि भगवान तो सूर्य है। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो जब सूर्य की उपमा देते हैं तो ये सृष्टि में आधा दिन और आधा रात होना चाहिए ना, वो कोई की बुद्धि में नहीं आया। दिन माने सो जरा ज्ञान का प्रकाश, और रात माने अंधेरा अज्ञान का अंधकार। जहां सच्चाई सत्य आत्मा को कोई नहीं जानता, सब भौतिकवादी होते जाते हैं। पांच तत्वों का अवगाहन करेंगे लेकिन आत्मा का अवगाहन नहीं करेंगे। पांच तत्व तो विनाशी हैं, और ये आत्मा तो अविनाशी है। तो बताया ये अविनाशी आत्मा कैसे 5000 वर्ष के षष्ठी चक्र में पार्ट बजाती है, ये ड्यूरेशन की बात किसी की बुद्धि में नहीं आई। भले इक्का दुक्का कहीं शास्त्रों में लिखा है कि हर युग की आयु 1250 वर्ष, लेकिन अनेक शास्त्रों में तो मटिया मेट किया हुआ। तो एक को मानेंगे या अनेकों को मानेंगे? जैसे यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा का भागीदार भी जौहरी था, छोटी सी दुकान लेकर के बैठा था और सच्चे हीरे बेचता था, सच्चे हीरे खरीदता था। उसकी दुकान चलती नहीं थी, सारा मार्केट झूठे जौहरियों का। उन झूठों के बीच एक सच्चा बैठा हुआ है तो कोई मानेगा क्या? क्या समझेंगे? ये भी झूठा होगा। जो आदमी है सोई अंत में, आदमी थी स्थूल हीरों की बात, स्थूल रत्नों की बात, और अंत में ज्ञान रत्नों की बात। जो भी ज्ञान सुनाने वाले विद्वान पंडित आचार्य बाबाएं हैं उनका बाजार लगा हुआ है दुनिया में। सब कैसे रतन बेच रहे हैं? झूठे रतन बेच रहे हैं, और भगवान बाप आकर सच्चे रतन की छोटी दुकान खोल कर बैठता है। तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो गीता की बात बताई कि गीता में एक ही श्लोक ऐसा है जो षष्ठी चक्र के ड्यूरेशन को मटिया मेट कर देता है। उसमें अगर सुधार आ जाए तो सारी गीता के पट खुलने लगते हैं। क्या? ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। उन्होंने लाखों हजारों वर्ष कर दिया, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, सतयुग की आयु, त्रेता की आयु, सब गड्डम मड्डम हो गया। जबकि होना क्या चाहिए? 2500 वर्ष ढाई हजार वर्ष का दिन और ढाई हजार वर्ष की रात होनी चाहिए। वैसे भी देखा जाए सुख की दुनिया और दुख की दुनिया, सुख का टाइम जल्दी बीतता है या देर में बीतता है, और दुख का टाइम बहुत लंबा हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है कि मनुष्यों को एक एक दिन गिनना पड़ता है। तो वो हुई ब्रह्मा की रात, जहां मनुष्य दिनों की गिनती करते हैं और संबत का नाम पड़ता है, विक्रमाजीत संबत, शक संबत, हूण संबत, ईसवी संबत, ख्रिस्त संबत, परंतु कोई भी संबत ढाई हजार वर्ष से पूर्व का है क्या? नहीं है। इसे साबित होता है ये संबतों की दुनिया, जब दिन गिनने लगे लोग संसार के, तो ये रात है अज्ञान की या दिन है? अज्ञान की रात है। जब रात है ढाई हजार वर्ष की, तो दिन कितना होगा? ढाई हजार वर्ष। गीता में एक ही श्लोक अगड़म बगड़म होने से ये दिन और रात का हिसाब नहीं लगा सके कि ब्रह्मा का दिन भी ढाई हजार वर्ष और ब्रह्मा की रात भी ढाई हजार वर्ष। तो सारी बात उल्टी पलटी हो जाती है। अभी बाप ने आकर के आंखें खोली और
हाँ, कार्तिक ने क्यों मारा? गणेश ने क्यों नहीं मारा
है?
कार्तिक ने क्यों मारा?
किसने मारा?
कार्तिक ने क्यों मारा? गणेश ने क्यों नहीं मारा?
कार्तिक ने क्यों मारा? नाम है उसका तारकासुर। कैसा असुर? तार माने क्या? ताड़ना करना। ताड़ना करना माने पिटाई करना। पिटाई करना हिंसा की बात है या अहिंसा की बात है? ये हिंसा करना, इसमें ताड़ का सुर सबसे आगे है असुरों में। और ये ताड़ का सुर को मारने के लिए कोई ताड़कासुर जैसा ही होना चाहिए, उसका बाप होना चाहिए या उसकी रचना होनी चाहिए? बाप माने बीज। तो भगवान शिव शंकर जिसे कहा जाता है, उसके दो बच्चे हैं। एक ज्ञानी आत्माओं में पहले पूजा जाता है, कौन? गणेश। और दूसरा है कार्तिकेय। कार्तिकेय माने टिक टिक बहुत करता है, ज्ञान की टिक टिक ज्यादा करता है। कितनी अम्माएं होती हैं? छह अम्माएं। इस्लाम धर्म की अम्मा, बौद्ध धर्म की अम्मा, क्रिश्चियन धर्म की अम्मा, संन्यास धर्म की अम्मा, मुस्लिम धर्म की अम्मा और सिख धर्म की अम्मा, छह विधर्मियों की अम्माएं वो उसकी पालना करती है। इसलिए उसको कितने मुख दिखाए जाते हैं? छह मुखों से बात करता है। कहते हैं ना, तुम तो दुमुहे आदमी हो। क्या एक बात नहीं करते, तुम दो दो बातें करते हो। तो वो छह धर्मों को पोषण करने वाला बाप है कौन? कार्तिकेय। इसलिए कार्तिकेय को कार्तिकेय के बाप ने दक्षिण भारत में भेजा। क्या? असुरों का हनन करने के लिए। दक्षिण भारत भारत का विदेश है, समुद्र के किनारे है या नहीं है? जो दक्षिण भारत है वो पहले नहीं था 2500 वर्ष पहले। जैसे दुनिया के दूसरे देश 2500 वर्ष पहले नहीं थे, समुद्र के गर्त में समाये हुए थे, ऐसे दक्षिण भारत भी समुद्र के गर्त में समाया हुआ था। तो दक्षिण भारत के लोग कार्तिकेय को विशेष मान्यता देते हैं, सुब्रह्मण्यम स्वामी के रूप में। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों की सुरक्षा किसने की? कार्तिकेय ने की। किससे लड़कर? है असुरों से लड़कर, राक्षसों से लड़कर। इसलिए कार्तिकेय को सेनापति बनाया गया असुरों से युद्ध करने के लिए। भगवान बाप का बच्चा है तो उससे असुर जीतेंगे क्या? है? अरे भगवान बाप तो सारी दुनिया का मालिक है, देवताओं की दुनिया का भी मालिक है, तो असुरों की दुनिया का भी मालिक है। इसलिए मुरली में बोला स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो क्या नरक की दुनिया मेरी नहीं है? क्या? किसकी है? बाप की ही है। दुख की दुनिया और सुख की दुनिया दोनों का बीज बाप एक है। उस बाप के दो बच्चे हैं, एक ज्ञानी और दूसरा सन्यासी। गणेश सन्यासी था या गृहस्थी था? गृहस्थी था, माँ बाप को फॉलो करने वाला। और कार्तिकेय सन्यासियों का बाप। तो बाप ही तो बच्चों को कंट्रोल करेगा। तारकासुर को कौन मारेगा? है? बाप ही मारेगा। तो वो कार्तिकेय छह कृतिकाओं का पुत्र है। छह कृतिकाओं ने उसे पाला, छह धर्मों के छह विधर्मियों के संस्कार उसमें है। इसलिए तू अपनी बात को नहीं सुनता। क्या कहा? ताड़कासुर को मारने वाला कार्तिकेय ही क्यों हुआ? पता चला? और
1946 में अंत में होगा ऐसा तो बताया गया
है।
फोर्थ वर्ल्ड जो लास्ट में होगा जिसमें एटॉमिक विस्फोट होगा।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
तो बाबा थर्ड वर्ल्ड के बारे में थोड़ा कुछ पता नहीं चला?
महाभारी महाभारत गृह युद्ध
कब होगा?
कौन सा देश है जहाँ? अरे पूरी बात तो सुन लो। दुनिया में ऐसा एक ही देश है जहाँ छोटे से देश में अनेक भाषाएं हैं और उन अनेक भाषाओं को लेकर के आपस में खूब मुड़ फुटटोल है। उत्तर भारत के लोग हिंदी ही हिंदी चिल्लाते हैं और दक्षिण भारत में तमिलनाडु हिंदी का बायकॉट कर दिया, प्राइमरी स्कूल में भी हिंदी नहीं। इतना विरोधाभास। जितने भी स्टेट हैं दूसरी दूसरी भाषाओं के, वो अपनी भाषा को, प्रादेशिक भाषा को आगे रखते हैं और हिंदी भाषा जो राष्ट्रीय भाषा है उसको पीछे कर देते हैं। तो झगड़ा है या नहीं है, बड़ा झगड़ा है या छोटा झगड़ा? ऐसा कोई देश और दूसरा है दुनिया में जहां भाषाओं को लेकर के इतना झगड़ा हो? छोटे से भारत देश में जितनी जातियां हैं मनुष्यों की, इतनी जातियां दुनिया के किसी भी देश में नहीं। उस जातिवादी को लेकर जितना भारत में झगड़ा है उतना दुनिया के किसी भी देश में नहीं।
बाबा,
अरे फिर बाबा के पड़े। चलो शॉर्ट कर देते, ऐसे बहुत से कारण हैं। जितनी राजनीतिक पार्टियां भारत में हैं और वो पार्टियां आपस में झगड़ रही हैं, इतनी राजनीतिक पार्टियां दुनिया के किसी देश में नहीं है। जितना राज्यवाद और राज्यों को खंड खंड करके अलग अलग भागों में बांटने का झगड़ा भारत में है, इतना दुनिया के किसी भी देश में नहीं। ढेर की ढेर ऐसी बातें हैं जिन बातों को लेकर के भारत के अंदर आग फैली हुई है और वो आग कब भड़क उठे ये किसी को पता नहीं है।
अभी भी ऑन लोकोदेश में से चल रहा।
हाँ जी। अरे रुको तो, प्रश्न क्या था? थर्ड वर्ल्ड वार कब होगी? तो भारत के अंदर जो आग भड़क रही है पूंजीवादियों के प्रति रोष, क्या पूंजीवादी माने धृतराष्ट्र, धृत माना हरण कर लिया है, राष्ट्र माने धन संपत्ति। इस भारत की सारी धन संपत्ति गरीब लोग हरण करके बैठे हैं या धृतराष्ट्र हरण करके बैठे हैं? कौन धर बैठे हैं? धृतराष्ट्र। और वो धृतराष्ट्र उस धन संपत्ति के आधार पर बड़े बड़े नेताओं को अपनी मुट्ठी में किए हुए हैं। वो धृतराष्ट्र उनको धन देंगे वोटिंग की लड़ाई लड़ने के लिए तो वो जीतेंगे, धन नहीं मिलेगा तो नहीं जीतेंगे। इसे क्या साबित हुआ है? क्या साबित हुआ? ये गरीबी का पांडव गरीब थे या साहूकार थे? गरीब थे। और बाप गरीब निवाज है, गरीब निवाज बेहद का बाप गरीबों को अपना बच्चा बनाता है या धृतराष्ट्रों को अपना बच्चा बनाता है? तो ये भी लड़ाई का बड़ा कारण है। तो बताओ कौन सा युद्ध पहले होगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर पहले होगी। और बाबा तो कहते हैं महाभारी महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा है। इसलिए बोला तुम बच्चों को अब गीत गाना नहीं है, गीत सुनना भी नहीं है, डांस करना भी नहीं है। सामने मार काट हो रही हो, महाभारत युद्ध हो रहा हो, खून खराबा हो रहा हो, तो कोई डांस करेगा? ब्रह्मा कुमारियां तो कर सकती है, गीत गा सकती है, गीत सुन भी सकती है, लेकिन तुम बच्चे सुनेंगे डांस देखेंगे? ये टाइम है भी नहीं है, विनाश सामने खड़ा है। तो तृतीय विश्व युद्ध पहले होता है, जो झाड़ के चित्र में दाईं ओर दिखाया है। और मैं नहीं सुनता तेरी बात, प्रश्न कर देता है और फिर इधर उधर बातें करना शुरू कर देता है। हाँ बोलो।
कोलिकांत में जो दिखाया जाए भगवान कल क्या बतलेगा, जो 2017-18 में कल क्या बतलेगा, लेकिन बाबा ने मुरली में बताया 2008 में बाप का प्रकृत हो जाएगा, तो 18 से पहले होगा तो ये ब्राह्मण परिवार में होगा ना बाहर का पूरा दुनिया के सामने, जैसे अखबार में न्यूज पेपर में पूरा दुनिया देखेगा कल क्या अवतार, जैसे हिंदू में शास्त्रों में लिखा हुआ है।
शास्त्रों में कल की अवतार को कौन से नंबर का अवतार बताया है? लास्ट। तो भारत के लोगों को पता है कि लास्ट से पहले के जो अवतार हैं वो कब हुए और कौन निमित्त बने, मालूम है? तो फिर कल की अवतार के ऊपर कैसे विश्वास कर लेंगे? कल की अवतार में तो बताया है कि कल की भगवान काले घोड़े पर सवार है। उनकी बुद्धि में क्या है, कोई काला घोड़े पर सवार होकर के तलवार हाथ में लेकर आएगा? क्या ये अर्थ है? काला घोड़ा कौन है? अरे शास्त्रों में तो बता दिया इंद्रियाणि हयान्याहु, इंद्रियों को है माने घोड़ा समझ। इंद्रियां क्या है? घोड़ा। कितनी इंद्रियां हैं? है 10 इंद्रियां, 11वीं इंद्री नहीं है, वो तो मुख्य इंद्रिय है। तो काला घोड़ा कौन है? मन रूपी ब्रह्मा। वो लगाम में है, श्रीमती श्रीमत रूपी लगाम के अंदर है, श्रीमत देने वाले को पहचानता है, है? नहीं जानता। तो लगाम के अंदर रहना भी नहीं जानता, बिना लगाम के घोड़ा जैसे कंट्रोल नहीं आता, ऐसे वो तामसी घोड़ा है इसलिए काला दिखाया है। जानवर के रूप में घोड़ा है या ह्यूमन घोड़ा है तो लोग समझेंगे, है? ये बातें मनुष्य कैसे समझेंगे? कवियों की भाषा तो कवियों के द्वारा ही समझाई जा सकती है। दुनिया का बड़े से बड़ा कवि है, गीता का गीत गाने वाला भगवान, वो आकर के सब शास्त्रों का सार बताई देता है। और ये नहीं बताया कि वर्ष निश्चित कर दिया सन 18, आगे पीछे भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, है? ज्ञान मार्ग में तिथि तारीखें निश्चित की जाती हैं क्या? नहीं की जाती। उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। और
संगम बुद्धि, संगम बुद्धि में अपना अपना पार्ट बुद्धि में आएगा, तो अपना अपना पार्ट बुद्धि में आएगा,
अपना अपना पार्ट
निशानी क्या होगा
बुद्धि में आने का? निशानी क्या होगा? जिसकी बुद्धि में अपना पार्ट आएगा, वो अपने पार्ट को अपने मुंह से उगलेगा या नहीं उगलेगा? अपनी कर्मेंद्रियों से जो कर्म करेगा, वो उसके पार्ट को टैली करेगा या नहीं करेगा? उसका चेहरा राक्षसी पार्ट का है या दिव्य देवताई पार्ट का चेहरा है, वो देखने में आएगा या नहीं आएगा? तो वाचा से भी, कर्मेंद्रियों की कर्मणा से भी, मन के वाइब्रेशन से भी, और दृष्टि की दिव्यता से भी, जैसे सीरियल में देखा होगा राक्षसों की आंखें कैसी होती हैं, गोल गोल रावण की, और देवताओं की आंखें गोल गोल दिखाई देती है, खून से भरी हुई दिखाई देती है, भयंकर दिखाई देती है या दिव्य दृष्टि दिखाई देती है, तो प्रत्यक्षता नहीं होगी है? होगी। ये विकर्मों के विनाश होने के ऊपर आधारित है। जितने जितने 63 जन्मों के पाप कर्म है, वो पाप कर्म धुलते जाएंगे और आत्मा की प्रत्यक्षता होती जाएगी। और
बाबा, ये जैसे दुनिया में इतने सारे जो जंतु जीव जंतु वगैरह है, कीड़े मकोड़े है, ये सब जब पहले बार आते तो बहुत कम संख्या में आते, फिर बढ़ते जाता, जैसे अभी बहुत सारे, मतलब सभी बहुत सारे बढ़ गए। तो बाबा, जो कुछ कुछ जो प्राणियां है जो विलुप्त हो गया है, जो लुप्त हो गया है, वो कैसे अभी लुप्त हो गया बाबा?
जैसे डायनासोर है, डायनासोर चौपाए जानवरों की लिस्ट में है, जो चार पांव से चलते हैं। ये चौपाए जानवरों की जाति प्रजातियां आपस में संसरण करने से बदल जाती है। जैसे मनुष्यों की जातियां आपस में संसरण करने से बदल जाती है या नहीं बदल जाती है? है?
बदल जाती
है। इंडियन एंग्लो इंडियन बनता है कि नहीं बनता है? इंडिया के देव आत्माएं क्रिश्चियन बन गए या नहीं बन गए? मुसलमान बने या नहीं बने? बौद्धि बने या नहीं बने? जाति बदल गई ना। ऐसे ही डायनासोर की भी एक जाति हुआ करती थी। कोई जंगल में वो विशेष पाए जाते थे। जंगल में आग लग गई, सारा जंगल दहक उठा और डायनासोर की सारी प्रजातियां लुप्त हो गई। कहीं एक बचा, या एक दो बचा। मान लो दोनों मेल बच गए या दोनों फीमेल बच गए, और मगरमच्छ वो रह गए, तो मगरमच्छ का मेल डायनासोर के साथ हो सकता है या नहीं हो सकता है? हैं? हो सकता है, वो भी चौपाया, वो भी चौपाया। जैसे गधे से खच्चर बन जाता, घोड़े से गधा बन जाता। कोई कुत्ते देखे होंगे, उन कुत्तों का मुख भेड़िए की तरह दिखाई पड़ता है, या तो शेर और चीते की तरह गोल दिखाई पड़ता। तो आपस में संसरण होने से वो प्रजातियां बदल जाती हैं, प्राकृतिक परिवर्तन होने से वो जातियां लोप भी हो जाती हैं। और
बाबा आपने कहा कि जो पुरुषार्थ में चार सब्जेक्ट है, पुरुषार्थ में चार सब्जेक्ट है, उसमें फल तुम बच्चे से याद करो बस उसमें सब आ जाता है। तो आज आपने कहा कि जो हेल्थ वेल्थ बनने के लिए
है, हेल्थ वेल्थ पाने के लिए
ज्ञान भी चाहिए, याद भी चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो कोई कोई माताओं का ऐसा होता है कि ये खाली याद ही बैठ के सुविधा होता है,
याद में ही टिकती है, ज्ञान बुद्धि से अभी अभी सुनती है, अभी अभी उड़ जाता है। क्योंकि बुद्धि जो मुख्य पावर है आत्मा की, वो बाल बच्चों को जन्म देने में पालने में खप जाती है, सारी बुद्धि रचना में चली जाती, तो बुद्धि छीण हो जाती है। जैसे गीता में कहा संगात संजायते कामा, संग करने से कामना पैदा होती है उस बच्चे के प्रति, क्योंकि 9 महीने पेट में रखा है, संग किया कि नहीं, वर्षों गोद में खिलाया है, दूध पिलाया है, संग किया कि नहीं, तो उस बच्चे के प्रति कामना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है। बच्चे दिन प्रतिदिन तामसी होते जा रहे हैं या माँ बाप की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं, है? तो इच्छा की पूर्ति नहीं होती, कामेशु क्रोध आता है, कामना पूरी न होने से क्रोध आता है, बार बार क्रोध आने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो माताओं की बुद्धि नहीं उतनी काम करती कि ज्ञान की बातों को याद कर सके, लेकिन लगाव वाली बुद्धि तो है, है? माता के रूप में जन्म जन्मांतर जो लगाव पैदा हुआ है वो तो संस्कार है। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा तुम्हारा बड़ा बच्चा है, शिव बाबा के प्रति तुम अपना लगाव पैदा करो, और लगाव हो भी जाता है, क्योंकि शिव बाबा ऐसा बच्चा है जिसको न 9 महीने पेट में रखा है और न उसे गोद में पाला है, न उसकी टट्टी पेशाब साफ करनी पड़ी, ये भी गारंटी देता है। कि विनाश के टाइम पर सब धोखा दे देंगे, कोई संबंध तुम्हारा नहीं होगा। लेकिन कौन होगा? एक बाप दूसरा न कोई। बच्चे भल बाप को छोड़ जाते हैं, लात मार जाते हैं, लेकिन बाप फिर भी उन बच्चों को छोड़ेगा नहीं, साथ लेकर के जाएगा, साफ सुथरा करके ले जाएगा या गंदा ही ले जाएगा। तो माताओं को बच्चे के रूप में बाप की याद बहुत आती है, और याद जिसकी करेंगे वैसे ही बनेंगे या कुछ दूसरे बनेंगे। चोर डकैतों का बुद्धि से संग करेंगे तो चोरी डकैती के संस्कार आ जाएंगे, साहूकार का संग करेंगे तो साहूकारी के संस्कार आ जाएंगे। डॉक्टर के घर में बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर डॉक्टरी के गुण ऑटोमेटिक आते रहते हैं। वकील के घर बच्चा पैदा होता है तो वकालत की बातें उसकी बुद्धि में ऑटोमेटिक आ जाती है, कि पढ़ता है न पढ़े तो भी आएगा। ऐसे ही माताओं की बुद्धि में जितनी याद ठहरती है उतनी याद और कोई भी की बुद्धि में नहीं ठहरती, और याद जिसको करेंगे वैसे ही बनेंगे। लेकिन जैसे पूरी घी या तेल में डाली जाती है, पहले नीचे बैठी रहती है कि तुरंत ऊपर आ जाती है, ऐसे ही जब तक याद में परिपक्वता नहीं आएगी तब तक बुद्धि में वो ज्ञान इमर्ज नहीं होगा जो बाप के अंदर ज्ञान है। जैसे ही याद में परिपक्वता आएगी और बूढ़ी माताओं के अंदर भी ज्ञान इमर्ज होने लगेगा, ज्ञान आने से वो मुख से बाहर निकलेगा या नहीं? मुख से बाहर निकलेगा। नौजवानों की बात को लोग ज्यादा विश्वास करेंगे या माताओं और बूढ़ियों की बातों का ज्यादा विश्वास करेंगे? तो माताओं की सर्विस भी होगी, धारणा वाली धरणी तो होती ही है माताओं की। तो चारों सब्जेक्ट ऑटोमेटिक अंत में आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? तो एक योग में विजयी तो सब सब्जेक्ट में विजयी, योग में फेल सब सब्जेक्ट में फेल। योग माने प्यार, योग माने याद, जिससे प्यार होता है उसकी याद ऑटोमेटिक आती है। और
है जो मरेंगे उनको शरीर नहीं मिलेगा।
हैं?
जो मरेंगे उनको शरीर नहीं मिलेगा।
क्यों? अभी जो मर रहे हैं उनको शरीर नहीं मिलता है? हैं?
विनाश के समय जो
हाय हाय करके मरेंगे विनाश में, तो दुखी हो के मरे या सुखी हो के मरे? दुखी हो के मरेंगे तो कलयुग की दुनिया में जन्म लेंगे।
नहीं, 18 के बाद जो शरीर छोड़ेंगे उनको शरीर मिलेगा?
टाइम तो निश्चित नहीं किया। सारी दुनिया महाभारत तृतीय विश्व युद्ध में मरेगी या एटमिक विश्व युद्ध में सारी दुनिया मरेगी? एटमिक विश्व युद्ध में मरेगी। जबकि बम बड़े बड़े जो बनाए हैं मनुष्यों ने, वो एकाएक फट पड़ेंगे। 6-7 दिनों के अंदर सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। बड़े बड़े बम्बों का एक साथ विस्फोट होने से, जैसे दिवाली में बच्चे थोड़ा थोड़ा फोड़ते रहते हैं, फिर लास्ट में इकट्ठा फोड़ देते हैं, ऐसे ही होगा। तो जब इकट्ठे बम विस्फोट होंगे तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? बैलेंस बिगड़ जाएगा और बड़े बड़े भूकंप आवेंगे। समंदर का पानी खौल पड़ेगा, बॉइल्ड वाटर होने लगेगा और ढेर सारी भाप आसमान में उड़ जाएगी सारी दुनिया में। उधर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ सारे फट पड़ के समुद्र में आ जाएंगे, तो समुद्र का स्तर ऊपर आ जाएगा। ये अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जो पहले थे ही नहीं, आज भी क्या होने वाले, सब समुद्र के गर्त में समा जाएंगे। तो उस समय जब भूकंप आएंगे तो दुनिया में जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं खड़ी कर रखी हैं धृतराष्ट्रों ने, उन अट्टालिकाओं का क्या हाल होगा? ताश के पत्तों की तरह टूट टूट के गिरेंगी, उड़ने लगेंगी। तो उन टूटी हुई अट्टालिकाओं के अंदर जो लोग मरेंगे, कोई की टांग दब गई, कोई का सर दब गया, कोई के दोनों हाथ दब गए, बचाने वाला कोई नहीं, तो दुख में मरेंगे या सुख में मरेंगे? तो अंत मते सोगते, दुख की दुनिया में जन्म लेंगे या स्वर्ग में जन्म लेंगे? दुख की दुनिया में जन्म लेंगे। ज्यादा रोएंगे, चिल्लाएंगे, 6 दिन चिल्लाते चिल्लाते शरीर छोड़ेंगे, तो बिल्कुल कलयुग के अंत में जाके शरीर लेंगे।